नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ और जगहों के नाम बदल दिए हैं। बताया जा रहा है कि कुल 8 रेलवे स्टेशन के नाम भी मुंबई में अब बदल दिए गए हैं। ये सारे वो नाम हैं जिनका नामकरण अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान हुआ था। ऐसे में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति लेने के लिए अब इन सभी जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राज्य में इस तरह से जगहों के नामकरण किया गया हो। बीजेपी शासित ज्यादातर राज्यों में नामकरण की ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है। उत्तर प्रदेश में तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई जगहों के नाम बदल दिए हैं। इलाहाबाद बन चुका है प्रयागराज, फैजाबाद बन चुका है अयोध्या। इसी तरह 2019 के अर्धकुंभ को ही इन्होंने कुंभ का नाम दे दिया था। अब अगर सीएम अपने स्तर पर नाम बदल रहे हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कुछ पुरस्कारों का नाम बदल कर इस ट्रेंड को बढ़ावा दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा हलफनामे में दे दिया है। एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 तक 3346 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 1609 बॉन्ड रिडीम करवाए गए। इसके अलावा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 18,871 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 20,421 बॉन्ड रिडीम करवाए गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनसे कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए और इन बॉन्ड्स में से 22,030 बॉन्ड रिडीम करवाए गए। न्यूज़ एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एसबीआई चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर कर बताया था कि उसके आदेश को मानते हुए बैंक ने चुनाव आयोग को हर बॉन्ड को खरीदे जाने की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य की जानकारी दी है। एफिडेविट में कहा गया है कि बैंक की तरफ से चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड कैश करवाने की तारीख, जिस सियासी दल ने बॉन्ड के जरिए धन प्राप्त किया है उसका नाम और चुनावी बॉन्ड के मूल्य की जानकारी भी दी गई है। एसबीआई का कहना है कि डेटा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और रिडीम करवाए गए बॉन्ड्स के संबंध में दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें से 2 प्लांट गुजरात और 1 असम में स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़ी करीब 125,000 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन का एक ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगा। पीएम ने कहा, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास रच रहे हैं और उज्ज्वल भविष्य की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। भारत अब दुनिया में मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने सत्ता में रहते हुए हजारों करोड़ के घोटाले किए, लेकिन सेमीकंडक्टर बनाने में हजारों करोड़ का निवेश नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। पीएम मोदी ने कहा, हम एक तरफ देश में तेजी से गरीबी कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही अब तक 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजना का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। हरियाणा में बीजेपी ने नई सरकार बना ली है। पार्टी ने अब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी है। नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 5 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आज बुधवार यानी नायब सिंह सैनी ने बहुमत परीक्षण के लिए प्रस्ताव पेश किया है। बता दें कि सैनी को फ्लोर टेस्ट पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 7 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन बताया जा रहा है। इस तरह देखा जाए तो कुल विधायकों की संख्या 48 हो जाती है, जबकि बहुमत के लिए 46 विधायकों की ज़रूरत है। दूसरी तरफ JJP के 5 विधायकों के भी बीजेपी में आने की संभावना है। इस तरह देखा जाए तो सैनी को फ्लोर टेस्ट पास करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बेंगलुरु के फेमस द रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के मामले में NIA को बड़ी कामयाबी मिली है। NIA ने रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। शख्स की पहचान शब्बीर के रूप में हुई है और वो बेल्लारी के कॉल बाजार इलाके का बताया जा रहा है। NIA द्वारा हिरासत में लिया गया शब्बीर तोरांगल में एक निजी कंपनी में काम करता था। 1 मार्च की सुबह 9:10 पर बूढ़ा कॉम्प्लेक्स के पास उसकी मुलाकात संदिग्ध व्यक्ति से हुई। इन्हीं सब शक के आधार पर NIA के अधिकारियों ने शब्बीर को हिरासत में ले लिया है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए बम ब्लास्ट मामले में NIA के अधिकारी जांच जारी रखे हुए हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।